अज्ञानत निरांधस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तवैवास्मि तवैवास्मि मंदे कृतेन्दे वरम जडं जागृदरोति संविदध तं पट्टरस्य सिया वृंदारण्य निवासिनं हृदि सद्नामाभिरामोदरं राधा स्कंद निवेशितो से गुरु गौरांग की कृपा से आज छठा दिन भी हम लोगों का निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। आज हमारी यात्रा धीर समीर राक्षसस्थली बंसीवर गोपीश्वर महादेव और गोमा किला में श्री राधा गोविंद देव का दर्शन करके अभी लौटे हैं। वहाँ पर सबके संबंध में कुछ कथाएँ जरूर हुई होंगी। अभी के बोले छिलो ऊपर তুমি বলেছ ধীর সমীর
Radha Krishna's divine amour. since the breeze has been intoxicated, it can move very fast. So it slows down. So the place is called Dhira Samadhi. Another, there is a Samadhi of Bhagavadas Pandit there. Sri Bhagavadas Pandit was Priyadam Sakha of Sri Krishna. And he is actually Subal Sakha. He is the manifestation of Subal Sakha. Subal Sakha, as we know, is very intimate. He looks exactly like Srimati Radhika. If Subal Sakha is dressed like Radhika, then if he is dressed in a female dress, then no one can understand whether he is Radhika or Subal. So he is so much alike Radhika. And he is very close, reaching up to the state of Prema called Mahabhava. So Sri Krishna, he always accompanies Sri Krishna in many sweet pastimes with Radhika. So Sri Gopinath Pandit, he was actually brother of Suryadas Sarkhela, the father-in-law of Nityananda Prabhu, and he lived in Ambika Kanma. So there we heard from Srimad Asananda Prabhu that how Sri Gopinath Pandit insisted Sri Nityananda Prabhu and Chaitanya Mahaprabhu to stay at his home. So Nityananda Prabhu and Chaitanya Mahaprabhu offered him their wooden deities, but he wanted Mahaprabhu to stay, so the deity started to walk away. Finally, Mahaprabhu in his original form stayed there in Ambika Kalma. Even today, we can see how Nityananda Prabhu and Gauranga Mahaprabhu look exactly by visiting his abode in Ambika Kalma. Also, Mahaprabhu gave him his oar for boating. So this oar signifies that he has given the oar of holy name and Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita. By using this oar of holy name, we can cross across the ocean of repeated birth and death. Another wonderful pastime that took place in Dhira Samir explains that Guru is eternal, his body is eternal, Guru is completely Sachidananda. To think that Guru is ordinary human being is a big offense. Archa Vishnu Srinagar Guru Shadharmati, Vaishnava Jati Buddhir. So to think that Guru is ordinary human being, this is a hellish mentality. So, one time, Sri Vakreshwar Pandit's disciple is Gopal Guru Goswami. And then Gopal Guru Goswami was in charge of Radhakanta Mutt. Within Radhakanta Mutt comes Gambhira, where Mahaprabhu spent 24 years. So, in Sanyas life, Mahaprabhu spent in Gambhira 24 years, and he used to be always absorbed in the mood of Sri Yogi Radha. One time, the government of Utkal, Odisha, became against the Radhakanta Mutt, and they wanted to take away all the property from Dhyanchandra Goswami and caused a lot of disturbance. So Dhyanchandra Goswami, he actually was very worried that how to stop the disturbance caused by the government. One person from Braj came and reported that, "I saw your guru, Gopal Guru Goswami, doing bhajan at Dhira Samir." So he immediately walked all the way from Odisha to Braj, and there he saw his Gurudev chanting Hare Krishna Mahamantra and deeply absorbed in Radha Krishna Bhajan. So he told his Gurudev that, "See Gurudev, you have appointed me as your successor, but yes, the government is causing disturbance. So please come personally and convince the government." So that time Gopal Guru Goswami told that, "Don't worry, you should return to Jagannath Puri and you find a new tree. From that new tree you make my deity and install that deity in the mud. As soon as you start the worship of the deity, then all the disturbance will melt away." And that's what he did. He went back and he installed the deity of Sri Gopal Guru Goswami, and all the disturbance melt away. So this particular place, Dhira Samir. Yes. So even today, Srimad Madhava Maharaj is adding that Sri Gopal Guru Goswami's deity is even today in Radhakanta Mutt. And there, the bhog is offered to Krishna and then to the deity of Gopal Guru Goswami. And then
the Gopal
Guru is offered himself. Yeah, actually, this is another wonderful thing that the bhog is offered to Gopal Guru Goswami. Gopal Guru Goswami will personally make it and offer it to Krishna. This is what goes on in even Udupi, where Madhvacharya, they don't make an offering. They put that prasad inside and they believe that Madhvacharya personally comes and makes offering to Lord in So it's a very important thing that Guru never disappears. He only is not seen by our vision, but is always present in manifest or in manifest form. His presence is eternal.
वंशी भट्ट संबंधे कुछ बंगला ते बोलो
I don't know.
তাহলে কিন্তু আমাদের অসুবিধা হতে পারে। সুতরাং আমরা বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে হরিকথা শ্রবণ করব এবং শিবর এবং ধীর সমীরের আমরা কথা কিছু শ্রবণ করলাম। আরো বৈষ্ণবদের শ্রীমুখ থেকে অনেক হরিকথা শ্রবণ করে আমাদের জীবন সার্থক করবো। বাঞ্ছা গর্বদের কৃপা
পদ্মনাম মহারাজ এবাউট গোপীশ্বর মহাদেব
nearby to where So now there, Lord Shiva was situated and he was watching Narasa dance as it was going on, the beautiful singing and dancing of all the gopis and Shri Krishna. But at that time, the gopis, they began to feel that there was something not up to the highest standard of tasting ras. So they thought, oh, there must be some kind of outsider nearby. And then they searched in that nearby kund, and there they saw this beautiful young gopi, which they had never seen before. So they approached her with a group of gopis, they surrounded her, and they said, oh, who are you? What is your name? But Lord Shiva had not been given any of the transcendental items of the spiritual body, which are describing name, the form, dress, etc. He had not been told these things by Yogamaya Purnamasi. So when they asked him these questions, who are you? What is your name? What is your husband's name? Where is the village that you live? Who is your father-in-law? And then he simply, in the form of a beautiful gopi, simply smiled and looked here and there. Now the gopis became very concerned. And because sometimes demons and asuras, they take different forms and shapes and try to enter into Krishna's pastimes to disturb. So now they caught this gopi and they did gulcha, punching the cheeks of this gopi. And now the gopi's cheeks were becoming so reddish. And the gopi was crying out for Yogamaya Purnamasi. And Yogamaya Purnamasi now became, her heart melted for Lord Shiva, and she came there. And she told all the other gopis, oh, actually I have given this benediction. This is Lord Shiva Mahadev. I have given him this benediction in the body of a gopi that he may be able to witness the Ras Leela. So you kindly give him your mercy. So then all the gopis agreed, and Lord Shiva was situated in the northeast corner of the entire Ras Mandala, where he is situated to this very day. And there he is guarding the entrance to the Ras Leela. So therefore, if someone desires to enter into the Ras Leela of Radha and Krishna and their eternal associates, there is only one way, and that is through the mercy of Lord Shiva. He has been given that position to protect the Ras Mandala. So therefore, our acharyas like Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Srila Ranganath Das Goswami, they have indicated that the gopis, they used to also worship Lord Shiva to attain the association of Krishna in the Ras Leela. And Vishwanath Chakravarti Thakur has written the pranam mantra, Vrindavana Vanipate Jaya Soma Soma. So he is the protector of Braja Vrindavan, and without him, no one can attain this prema for Krishna, prema prayacha nirupati. So he is the giver of divine Krishna prema. Therefore, we always worship Lord Shiva Mahadev. Srila Gurudev has also installed a very beautiful murti in Sri Rupsanatha Gaudiamat of Gopishwar Mahadev. So therefore, we are all following in the footsteps of our Rupanuga Sampradaya and worshipping this form of Lord Shiva Gopishwar Mahadev. Vansa Kalpatrila Shiva Prasadhyaya.
Dhir Krishna, Govinda Dev ke sambandh mein kuch bolo Hindi mein. बोल सकता है तो भी बोल इतना दिन रात लिखता है पढ़ता है बोल नहीं सकता
Yanandana Salakaya Chaksu Lilitaniya Tasma और सीमित सेवा ये चार दायित्व गोस्वामियों को दिए। में महाप्रभु किस लिए आए थे, महाप्रभु की महिमा धरा के धरा धरा रह जाता। हम लोग पहले गुरु जी से पूछते सुने कि जंगल के ऊपर शरीर का था, तो इस लिपि में बहुत सुंदर रूप में लिखा हुआ है। गुरु जी बोलते हैं कि फिक्स का फर्स्ट फिक्स का गोल टाइम साधन, हमारा गोल क्या है, हमारा गंतव्य स्थल क्या है, भवलास जी को प्राप्त करना। किसको पाने के लिए हमें साधन करना पड़ेगा, साधन के लिए शुरू हुआ सही बात अपने उपदेशम लिपि में। सो भजन के प्रथम सोपान से लेकर के अंतिम सोपान में लिखा है,
चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं भक्ति एक ऐसी सर्वतंत्र स्वतंत्र है कि महापापी व्यक्ति भी, दुर्जन व्यक्ति भी, यहां तक महाकामुक व्यक्ति भी, बिल्व मंगल जैसा कामुक व्यक्ति भी भक्ति जब आरंभ कर देता है तो भक्ति के प्रभाव से उसके काम इत्यादि जितने हैं सब दूर हो जाते हैं। भागवत का श्लोक उपस्थित करते हैं, पीक्रीडितम बजुबधुभि दंच विष्णु श्रद्धा श्रणुया तथ वर्ण ये तज भक्ति पराम भगवती प्रतिलब्ध कामम रोग मासु अपहृत्य चिरो निधेर। कर्म जो ज्ञान के साधक या अधिकारी काम आदि दोष रहने से, दुराचार के आ जाने से उनका सर्वनाश हो जाता है। कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, इसलिए सबसे पहले दूर करके ज्ञान योग का अनुष्ठान करने पर, शुद्ध होने पर उनको मुक्ति मिलती है। भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं है। भक्ति मार्ग में काम इत्यादि हो, काम माने भोग की लालसा, स्त्री पुरुष संग की लालसा, और जितने पाप हैं, रहते हुए भी मनुष्य भक्ति का अधिकारी है। प्राणी मात्र, जीव मात्र, विशेष करके मनुष्य भक्ति का अधिकारी हो, जिस अवस्था में हो, अजामिल जैसा पापी हो, जगाई मधाई जैसा पापी हो, अथवा और जितने पापी हैं, भक्ति के अंगों का पालन करते 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 हृदय में स्वतंत्र भक्ति देवी आविर्भूत हो जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं, और शीघ्र ही समस्त दोषों को दूर कर देती है। श्रील ग्रंथकार महोदय शास्त्रों के प्रमाण से इसी तत्व का यहाँ पर प्रतिपादन कर रहे हैं। भक्ति के उदय में सबसे प्रथम अंग है श्रद्धा। दुचारी व्यक्ति भी रहेगा, पापी भी रहेगा, कामी भी व्यक्ति रहेगा, पहले श्रद्धा होगी। श्रद्धा माने क्या? महापुरुषों के वचनों में और शास्त्र के वचनों में उसको विश्वास होगा। पहले तो उसमें कृष्ण सेवा की वासना आएगी, कृष्ण की सेवा करूंगा, और उसका दो लक्षण ये महापुरुषों के मुख से में जो कुछ लीला कथाओं को सुनते हैं और शास्त्रों में जिनका वर्णन है उनमें उनको विश्वास हो जाता है। भगवान की समस्त लीलाएं रसमयी और लीलाओं का सार है रास लीला। उस दिव्यतम रास लीला के वर्णन के बाद में फलश्रुति में भागवत में ही कहा गया, विक्रीडितम बजुबधु वेदं च विष्णु सद्धान्वितोऽनुशृणुयादथ वर्णयेदज भक्तिं परां भगवतीं प्रतिलभ्य कामं हृदरोगमाशु अपि हिन्नोत्यचिरेण धीर। जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि भगवान ब्रज गोपियों के साथ में जो लीला किए हैं बंसी बट में, आप जो जहाँ पर गए थे उसको श्रद्धापूर्वक यदि श्रवण करें। श्रद्धापूर्वक पहले बतलाया शास्त्र और गुरु वैष्णवों के वचनों में श्रद्धा, श्रद्धापूर्वक यदि सुने, श्रवण की और उसका वर्णन करें अथ वर्णय जह, तो उसको पराभक्ति हो जाती है। पराभक्ति माने प्रेमा भक्ति हो जाती है, और शीघ्र ही पहले भक्ति आती है और फिर हृदय का काम रोग है, हृदय रोग माने काम रोग, यह ऐसे तैसे नहीं जाता है, बिना भक्ति के आए नहीं जा सकता। सो जितने विकार हैं सब दूर हो जाते हैं। भक्ति परम भगवती प्रतिलभ्य, भगवान श्री कृष्ण में पराभक्ति लाभ कर, पहले भक्ति लाभ होगी और समाप्ति का क्रिया यहाँ पर कामम हृदरोगम अपि हैनोत्यचिरेण धीर। हृदरोग माने काम धीरे धीरे दूर हो जाए, धीर धीर माने धी माने बुद्धि, जो परम बुद्धिमान व्यक्ति है, जो ऐसा विश्वास करते हैं पापी व्यक्ति भी अनाधिकारी व्यक्ति भी यदि श्रद्धापूर्वक इसको श्रवण करता है तो भक्ति यहाँ पर पराभक्ति प्रेम भक्ति उत्पन्न होकर के उसकी सारी कामनाएं वासनाएं यहाँ तक की काम भी दूर हो जाता है। इसको जो विश्वास करते हैं वो तो धीर है, और जो विश्वास नहीं करते वे मूर्ख है, अपराधी हैं बल्कि शास्त्रों के। इसलिए अत्र तु हृदरोगो पहनात् पूर्वमेव भक्ति प्राप्ति ही, यहाँ पर हृदरोग दूर होने के पहले ही भक्ति पराभक्ति हुई, और पराभक्ति से हृदय रोग इत्यादि सब दूर हो गए। हृदय रोग माने काम, रहने की तो बात क्या रहे, अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी जो अनन्य रूप से भजन करता है उसको साधु ही समझना चाहिए। अपिचेत सु दुराचार भजते माम अनन्य भाग साधु रेव सम्मंतव्य सम्यक दर्शितो हि स। अपिचेत सु दुराचार अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी, भोगी दुर्जन पापी व्यक्ति भी यदि भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाग माने कृष्ण ही हमारे आराध्य, दूसरे नहीं, और कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कृष्ण को प्रसन्न करने अतिरिक्त और मैं कुछ नहीं चाहता, ये है अनन्य भाव। ऐसा व्यक्ति यदि हो, महादुराचारी होने पर उसको साधु ही समझो, सम्यक दवस्तो ही सर। यदि कोई कहे ये जितने परिमाण में पाप करता है उतने परिमाण में वो पापी है, और जितने परिमाण में वो अच्छा कर्म सत्कर्म करता है उतना वो साधु है, नहीं, संपूर्ण रूप में समझो। मंतव्य मेरा ऐसा आदेश है ऐसा समझो, वो पापी नहीं है, बल्कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वच्छ छांत निगच्छति कौंते प्रति जानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शीघ्र ही वो परम धर्मात्मा हो जाएगा। अजामिल ने अपने पुत्र के लिए नाम किया, अनजान में ही किया, और क्या हो गया, क्षिप्रम भवति धर्म, भगवान के परिकरों का संग हुआ, और वो सब जितना दुराचार सब छोड़ करके फिर हरिद्वार में जा करके भगवान का भजन करके चला गया बैकुंठ में। इसलिए उसको परम धर्मात्मा ही कहते, साक्षात छांत निगच्छति कौंते प्रति जान ही न मे भक्त प्रणश्यति। हमारा भक्त कभी भी न प्रणश्यति, उसका विनाश नहीं होता। अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो भक्त हो, हम प्रतिज्ञा करेंगे कहीं छूट जाएगा। अब कह रहे हैं भक्ति के संबंध में कहा गया, भक्ति कैसी है, क्लेश अग्नि शुभदा मोक्ष लघुता सुदूर लभा सदानंद विशेष आत्मा। ये भक्ति के 6 क्रम विकास हैं। इसमें पढ़े कहते हैं कि क्लेश अग्नि, यदि उत्तमा भक्ति अन्नाभिलाषिता शून्यम, या भक्ति यदि आरंभ की जाए तो श्रद्धा जहाँ हुई तहाँ भक्ति की क्रिया आरंभ हो जाती है। जितने प्रकार के क्लेश हैं जगत में, वृद्ध होना, रोग होना, अस्वस्थ होना, पुनः पुनः जन्म मरण इत्यादि के जो केस हैं, ये सब दूर हो जाते हैं, और सब प्रकार के शुभ उसके हृदय में उदित हो जाते हैं। उसी के संबंध में कह रहे हैं, श्री चक्रवर्ती ठाकुर ने साधन भक्ति को 2 गुण बतलाए, सब क्लेशों की निवृत्ति हो जाती है, और शुभदा, शुभ गुण जितने हैं भक्ति के उदित हो जाते हैं, चाहे वो वैधि भक्ति हो चाहे रागानुगा हो, दोनों में से कोई भी हो, दोनों में क्लिशग्नि और शुद्ध ये दोनों गुण उदित हो जाते हैं। क्लेश क्या है और शुभदा किसको कहते हैं, इसका यहाँ पर निरूपण कर रहे हैं। पहले महर्षि पातंजलि ने योग दर्शन के साधन पाठ के तृतीय सूत्र में लिखा है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये पांच प्रकार के क्लेश हैं। अविद्या माने क्या, अनित्य वस्तुओं को नित्य समझना, अपवित्र को पवित्र समझना, दुख को सुख समझना और अनित्य वस्तुओं में अनात्म वस्तुओं में आत्मवृद्धि होना, अर्थात देह गेह स्त्री पुत्र विषय वैभव आदि नश्वर वस्तु ते को नित्य समझना, स्त्री पुरुष वैभव धन संपत्ति यह नित्य है इसी से हम सुखी लाभ होंगे, यह बात ठीक नहीं। रक्त मांस मेघ मज्जा अस्थि मल मूत्र इत्यादि से पूर्ण अपवित्र शरीर, यदि कहीं पर हम मैला देखते हैं तो स्पर्श हो जाए, मैला मैंने टट्टी, तो फिर स्नान करके पवित्र, अरे मैला जो तुम्हारे हृदय में है पैखाना भरा पड़ा हुआ उसके लिए कितना बार स्नान करेगा, इसलिए अपवित्र को भी पवित्र समझते हैं। यहाँ पर राग द्वेष व्यभिचार सब भरा पड़ा है और स्नान करके पवित्र, उससे क्या होता है। और एक आदमी स्नान नहीं करता किंतु कोई भी उसमें दुर्गुण नहीं है वही पवित्र है। विशेष सुखों के परिणाम से भयावह जन्म मरण आदि नरक इत्यादि दुख होते हैं, यही सब दुख है, ये सब अविद्या के कार्य हैं। अस्मिता मैं हूँ, मैं शरीर हूँ और मेरे ये संबंधी ये मेरा पुत्र स्त्री पुत्र परिवार मेरा है, ये धन संपत्ति मेरे है, ये कुत्ते और गाय हमारे अपने हैं, ये अस्मिता राग सुख प्राप्ति दुख निवृत्ति के उपायों को कामना को राग कहते हैं। अथवा कोनो वस्तु हमें चाहिए, कुछ हम वस्तु चाहते हैं और नहीं मिले जो बाधा देगा उसके ऊपर में क्रोध होता है, इसको भी राग कहते हैं। द्वेष सुख या दुख के कारण के प्रति विरक्ति का नाम देश है। देश माने यदि हम कोई सुख प्राप्त करने जा रहे हैं आप बाधा दिया तो उससे हम द्वेष करते हैं। अनुकूल विषयों को प्राप्त कराने के आधार स्वरूप शरीर में आसक्त होना मृत्यु से भयभूत होना का नाम अभिनिवेश है। इस प्रकार के ये पंच अविद्या है और प्रारब्ध कर्म अप्रारब्ध कूट और बीज ये सब भी पाप हैं, इनके संबंध में हम कल बतलाएंगे। ये जितने हैं भक्ति के प्रारंभ करने में साथ ही साथ में ये जितने दुर्गुण है दूर हो जाना आरंभ करते हैं। कैसा बतलाया, जैसे हम भक्ति परेशानुभवो विरक्ति अन्यत्र चैत्रिक काल प्रपद्यमान उद्घासन, जितने हम खाते हैं प्रत्येक ग्रास नहीं जितना अन्न का दाना खाते हैं उतने में ही हमारी तुष्टि पुष्टि और खुदा निवृत्ति हो जाती है। साथ ही साथ में ऐसे ही भगवान की भक्ति भगवान की अनुभूति और विषयों से वैराग्य एक साथ में होता है। तो ये भक्ति के गुण हैं, इसके संबंध में हम कल बतलाएंगे, आज यहीं तक। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां।
Strong enough
unflinching faith that by hearing these pastimes I will achieve perfection. Therefore, who has this faith? That person is called Dhya. Faith means faith in the words of Guru and Shastra. And if a person thinks otherwise, then first fault should be dispelled, then bhakti will come. If a person thinks like that, they are foolish and an offender. Therefore, that regrowth, the disease of the heart, is called lust. Even if the worst person develops that ananya bhakti, or one point of devotion, then bhakti must come to them also. Sri Krishna describes in the Srimad Bhagavad Gita, apichet sikuracharo bhajate mamananya bhakti sarubhera himantavya samyakam sthitisa. Sri Krishna declares, even if the sutracharo means the worst person, the biggest bogey, materialistic enjoyer, or the worst sinful person takes shelter of my ananya bhakti, or my one point of devotion, then Krishna says, I declare him to be a sadhu. Then what is the qualification of someone who has ananya bhakti? Their symptom is that they always think Krishna is my worshipful deity, and apart from Krishna's seva, I have no other desires. A person who thinks like that, such a person is a sadhu. If someone thinks to that degree someone has bad qualities, then to that degree he is not a sadhu. Or concomitantly, to that degree that person has good qualities, then to that degree he is a sadhu, that is completely wrong. Who is a sadhu is dependent upon their faith, and not by the absence or by the possession of good or bad qualities. Then Sri Krishna qualifies it in the next verse, Chitram Bhavati Karmanma. Such a sadhu, if he has one point of faith in me, even though he may be have very bad qualities, Chitram Bhavati Karmanma, very quickly he becomes a most pious and religious person. So many examples are given in scripture. Arjuna was addicted to women and illicit activity. When he chanted the name of his son Narayan by accident, what happened? That led him to Sadhu Sangha, and hearing the glories of the holy name, he renounced everything, went to Haridwar, and became a religious personality. Therefore, Krishna says, Nama Bhakti Pranashati, my devotee is never destroyed. Or Arjuna, you should declare this pretty boldly. Therefore, there are, in Uttam Bhakti, there are three gradations. First is Shraddha, then Bhava Bhakti, then Prem Bhakti. In the stage of Shraddha, the two symptoms are developed in the devotee. Kleshakni, Subhada, Moksha, Sudurakrit, Sudurava, Sandra, Nanda, Krishnatma, Sri Krishna, Kasani, Chasa. Uttam, in the stage of Shraddha, two qualities will be seen in the devotee. The first is clay shakti. All type of disturbance will be burned to ashes. And then, simultaneously, subhada, all good qualities will manifest in that devotee. What is clay shakti? There are many different types of disturbance. Old age, disease, poverty, the cycle of birth and death. These will all be destroyed in the first stage of bhakti called shraddha. And Subhada means all auspiciousness and all good qualities will appear in the heart of that devotee. Whether the devotee is practicing Vaidhi Bhakti or Raghunuga Bhakti, in both forms of bhakti, these two qualities appear at the time of Shraddha. Patanjali has described in the Yoga Sutras five types of klesh or disturbance: avidya, asmita, rag, dvesh, avidvesh. What is avidya? Avidya means ignorance. That means to consider a temporary thing to be eternal, to consider a pure thing to be impure, to consider anatma to be atma, something which is not spiritual to be spiritual, to consider, that is called avidya. For example, to think my wife and children and wealth will make me happy, this body consisting of stool, urine, pus, blood and mucus to be me, that is called avidya.
by touching stool we have to take bath. Therefore, only by taking bath one does not become pure. One becomes pure by possessing good qualities. Therefore, these are five levels of klesh. First is avidya, then asmita. Asmita means to think, I am mine. I am this body because the relation to this body is mine. Rag means to desire material happiness and to avoid unhappiness. Dvesh means to be attached to happiness. Dvesh means to be attached to happiness or to try to detach yourself from unhappiness. That is dvesh. For example, someone does not fulfill my material desires, then I become envious of him. This is called dvesh. And lastly, abhinivesh. Abhinivesh means absorption in falsity, which manifests in fear of death. Example, if you think I'm this body, then you're afraid of death. These are five levels of klesh, and these are all destroyed in the first level of devotion called kleshagni. So, there are also four types of sin: parapta, aparapta, kut, and bish, but that will be discussed tomorrow. Then, how we can understand we are making progression in bhakti? Srimad Bhagavatam has declared Pareshana Bhavarati. Just like each mouthful of food that I take, then to a concomitant degree, I will have tushti, pushti, and kudnavriti. Tushti means satisfaction, pushti means nourishment, kudnavriti means freedom from hunger. So that much I eat, my kichari, that much these three things happen. Oh, Pramananda.